बाबा की कल की मुरली का रिविजन आदरणीय भाई साहब ने कराया। उसमें जो बात आज सारे दिन में जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं तो एक बात मैं शेयर कर रही हूं कि हैप्पी न्यू ईयर केवल आज के ही दिन है या सारा ही साल ये न्यू ईयर रहेगा? सोचने की बात है। केवल एक दिन के लिए हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं या अंदर ही अंदर सारा साल न्यू नया रहने का संकल्प कर रहे हैं? जिन्होंने ये संकल्प किया कि हम सारा वर्ष नए रहेंगे वो हाथ खड़े करो कि नवीनता अपना सत्युगी संस्कार है। आप गौर करेंगे, बाबा कहता है सत्युग में हर चीज नई होगी, कभी भी उसमें कोई पुरानापन नहीं होगा। वस्त्र भी हम पहनेंगे तो उसके बाद आगे दे देंगे, नई, सब चीज नई होगी। फिर नंबरवार होगी, ये तो है। राजा महाराजा, उसके बाद राजन, उसके बाद और आगे आगे, जैसे जैसे स्टेटस आता जाएगा नीचे वैसे उसमें पुरानापन आएगा। हम में से किसी को भी पुरानापन पसंद नहीं है, हर एक चाहता है नवीनता हो, नया हो। क्लास भी कोई अगर आप दोबारा सुनते हैं ना तो कहते हैं ये तो वही है, ये हमारा ओरिजिनल नेचर है। नवीनता हमारा ओरिजिनल नेचर है, हमारा सांस का लेना, हर पल नया हो जाता है, हर पल नया हो जाता है। लेकिन ये संस्कार हमने कब बनाए? संगम युग पर बनाए, और उन संस्कारों को बनाने का तरीका क्या था? बहुत सरल, और हम सबको वो तरीका उपलब्ध है जो बाबा ने कल भी मुरली में कहा टीचर्स को, टीचर्स भी ऐसा करें, नवीनता। इतनी नवीनता कहां से आएगी? कोई सोर्स चाहिए, सोर्स चाहिए ना, जैसे सागर है पानी का सोर्स है, हवा है ऑक्सीजन का सोर्स है, सूर्य है प्रकाश का सोर्स है, ऐसे नवीनता का सोर्स क्या है बताओ? नवीनता का सोर्स क्या है? नवीनता का सोर्स है शिव बाबा। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है बाबा की मुरली। अस्सी साल की आप मुरलियां देख लो, एक मुरली ना मिले दूसरे से। मैं तो मुरलियां पांच पांच बार, छह छह बार भी पढ़ती रही हूं, कभी भी एक मुरली दूसरी मुरली के साथ मिलती नहीं है, अलग होती है, न्यारी होती है। ये मेरा अनुभव है। अब रिसर्चर का काम है, स्टूडेंट का काम है कि जो उसको पढ़ाई का सोर्स मिला है उसमें से नवीनता ढूंढे। ये स्टूडेंट का काम है। दाता दे रहा है परंतु हम उसको ढूंढें, मुरली से ढूंढें। तो प्रतिदिन मैं नई रहूं उसका साधन है मैं बाबा की मुरलियों का अध्ययन गहराई से करूं और रोज लक्ष्य रखूं आज मुझे बाबा की मुरली से कोई नई बात निकालनी है। हर कोई लक्ष्य रखो, मुरली सुनने की चीज है परंतु विद्यार्थी होने के नाते हम उसका अध्ययन बाद में भी करते हैं, सुनते भी हैं और फिर बाद में करते भी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है एक एक बाबा का बच्चा अगर मुरली को अच्छी तरह अध्ययन करेगा तो कोई ना कोई नई बात निकाल लेगा। तो सारा वर्ष अगर मुझे निर्विघ्न रहना है तो उसका साधन है सदा उमंग उत्साह में रहना। सदा उमंग उत्साह में रहना है तो उसका साधन है पुराने को विदाई और नए को बधाई। पुराने को बिंदु लगाना पड़ेगा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई कोई आत्मा के लिए हम कहते हैं अरे भाई किसकी याद दिला दी, मैं तो उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती हूं, विदाई देना चाहते हैं ना। ऐसे जो पुरानी बातें हो चुकी अगर हम उनको बारंबार पश्चाताप के रूप से भी याद करते हैं तो हम उसे शक्तिशाली बनाते हैं। कोई भी बात बार बार स्मृति में आने से वृत्ति का रूप ले लेती है, एटीट्यूड। मुझे अपनी वृत्ति پرانی نہیں رکھنی ہے. اس لیے نیا پن مجھے چاہیے. اور بابا نے کل کتنا اچھا کہا ہے کہ مانو آپ نے کوئی سنکلپ لیا, آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے تو چھوڑیں گے تو نہیں نا. بابا نے کتنا سندر کہا کہ بچے چتورائی کرتے ہیں, بچوں کو پتا ہے ہمت ہم رکھیں گے, ایک قدم ہم لیں گے تو بابا 100 قدم لے گا. وگنا آتا ہے کمزوری سے. کئی بار بھائی بہن جب ملتے ہیں تو کہتے بہن جی میں وہ بات بھلا نہیں سکتی ہوں, میں وہ بات بھلا نہیں پاتا. اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, نہیں بھلا پاتا, کارن یہ کہ اس کو ہی یاد کر رہا ہے. انہی دنوں میں ایک چھوٹا سا انوبھو میں نے کیا, کوئی بات تھی بار بار دماغ میں آتی تھی. ایک دن امرت ویلے میں نے بابا کو کہا, بابا یہ میں اب آپ کو سمرپت کر رہی ہوں, آپ اس کو دیکھنا. ایک دم ہلکا پن آ گیا. اگر نروگھن رہنا ہے تو پیارے بھائی اور بہنوں اپنے کو ہلکا رکھنا ہے, لائٹ رکھیے. کسی بھی پرکار کا بوجھ, ڈیوٹی کا بھی بوجھ نہیں ہونا چاہیے. بوجھ والی آتما اڑ نہیں سکتی ہے, بوجھ والی آتما سوچ نہیں سکتی ہے, بوجھ والی آتما نرنے نہیں لے سکتی ہے. آپ جانتے ہیں کبوتر اور بلی, کبوتر کے سامنے بلی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور بلی مار دیتی ہے. اب کبوتر ڈر گیا, بھے بھیت ہوا, اس کے پاس پنکھ ہے, پنکھ سے وہ اڑ سکتا ہے, بلی تو نہیں اڑ سکتی. لیکن پریشر کے کارن, بھے کے کارن اڑ نہیں پاتا اور بلی اس کو لے لیتی ہے. ہم بچوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, سب پرکار کی باتیں, گیان کی اچھی اچھی پوائنٹس ہم سب کے پاس ہوتی, دوسروں کو سناتے بھی ہیں, لیکن جب کوئی بات سامنے آتی ہے اس کے وشیبھوت ہو جاتے ہیں, اور وشیبھوت ہونے کے کارن اس کے غلام بن جاتے ہیں, اس کے پنجے میں آ جاتے ہیں. اس لیے غور کریں گے جو بابا نے ہمیں 2 ماترائیں سکھائی ہیں, ایک فل سٹاپ اور دوسرا بابا نے کا کوئسچن مارک. ایزی ہے فل سٹاپ. اور جب کوئسچن مارک آتا ہے وہ ٹیڑھا بانکا ہوتا ہے. وگنا پانچ دواروں سے آتے ہیں. وگنا آنے کے پانچ دوار ہیں. کون سے کون سے؟ میں نے ہنٹ دیا ہے آپ کو. کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، یہ پانچ دوار ہیں جو آتے سار آپ کی منسا پر اٹیک کرتے ہیں. آپ کو کمزور بناتے ہیں. کل میں کلاس کرا رہی تھی ٹیچرز کا، اس میں یہ بات ابھر کر کے آئی کہ کسی کو بھی اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کی منسا کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کی مانسک شکتی پر پرہار کرتے ہیں. شریر پر پرہار بعد میں ہوتا ہے، پہلے مانسک شکتی سماپت کر دیتے ہیں. انگریزوں نے جو ہم پر راجیہ کیا تو اسی کارن سے تو کیا، ہم کو ہین بنایا، اپنی نظروں میں گرایا، تب ہم کو وہ جیت سکے. اور ادھر آپ راجپوتوں کا مثال دیکھیے، راجپوت جب یاد کرتا رہے میں راجپوت، میں کیا نہیں کر سکتا، تو کٹھن سے کٹھن کاریہ بھی سرلتا سے سمپن کر لیتا ہے. وگنا آتا تب ہے جب یہ کوئسچن مارک کے دوار کھلے ہیں، اور دوسرا جب ہم اپنے ساتھی کو بھول جاتے ہیں. بابا میرا ساتھی ہے، اور بابا سپشٹ کہتے ہیں، بچے کیا ضرورت ہے جو تم محنت کرو، تم صرف میرے گود کے جھولے میں آ جاؤ، میں تم کو اڑا لوں گا. بچہ جب کوئی چیز سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اپنے مات پتا کی گود میں جا کے چھپ جاتا ہے. بابا کی گود کتنی بڑی ہے، بابا کا دل کتنا وشال ہے. ہمیں اس سمے بابا یاد نہیں آتا. برا نہیں مانیے گا، پریکٹیکل میں کیا ہوتا ہے، پرستھتی کے غلام ہو جاتے ہیں. یہ چیز آ گئی، پرستھتی آ گئی، جو پرستھتی آ کر کے ہمارے آگے ہمارے ویژن کو، درشٹی کو، دیویہ درشٹی کو، گیان کی درشٹی کو بادلوں سے آچھادت کر دیتی ہے. دھند ہوتی ہے نا، تو دھند میں دکھائی نہیں دیتا. ایسے ہی مایا ہماری درشٹی کو دھندکاری، دھند والا بنا دیتی، جو ہم دیکھ نہیں سکتے. کیسے دھند بنتی ہے؟ 50 बातें उस परिस्थिति के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसने किया होगा, उसने किया होगा, उसने ऐसे बोला होगा, तब ये हुआ, अगर ये ना होता तो ये ना। उसमें जो हम गुम हो जाते हैं, हमारी मानसिक शक्ति क्षीण पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। और ये धुंध खत्म तब होती है जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है, समाप्त तब होती है जब प्रकाश मिलता है। हमें पता है ज्ञानी तो आत्मा है, उसके बावजूद भी अगर धुंध में हम फंस जाते हैं, फॉग में हम फंस जाते हैं, तो रास्ता दिखाने वाला फिर भी बाबा ही है। परंतु बाबा हमें एंड में याद आता है, चेक कर लीजिए। पहले हम सब साधन अपना लेते हैं, जहां जहां अपना जोर होता है उसे अपना लेते हैं, और जब सब हैंड्स अप कर देते हैं तो कहते हैं भाई अब बाबा ही है, बाबा को ही कह सकते हैं, पहले क्यों नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि अपने आप को हम कुछ समझते हैं, अपने आप को बाबा से दूर अकेला करके समझते हैं कि हम कर सकते हैं। बाबा के स्पष्ट महावाक्य हैं, अगर तुम साथी को भूलोगे तो मैं साक्षी हो जाऊंगा, जीत लो विघ्न। इसलिए स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान और कंबाइंड स्वरूप वाला समझना है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरा बाबा है। ये बारंबार स्वयं को पक्का कराए, बारंबार। और कोई बात हो जाती है ना, तो स्वयं को निर्विघ्न रखने के लिए उसे तुरंत बाबा को दे दो। बाबा ये मैं हैंडल नहीं कर सकती हूं, आपको करना है। स्वयं को डिस्टर्ब क्यों करते हैं, हमें हल्का रहना। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है, तुम बोझ उठाते ही क्यों हो, तुम्हें 2500 साल से बोझ उठाने की आदत है, इसलिए अभी भी बाप मिलने के बाद बोझ उठाते हो। एक तरफ बोझ वाला चित्र हम देखें और दूसरी ओर ताज वाला चित्र हम देखें, एक चित्र है जिसपे टोकरा पड़ा हुआ है बोझ वाला, और दूसरा चित्र है ताज वाला। कल कितना अच्छा बाबा ने कहा, सिर ताज। ये करना है, हल्के रहो, हल्के रहो। तीसरी बात, मुझे वातावरण वायुमंडल नहीं बनाना है। कहा जाता है सुख बांटा जाता है, दुख काटा जाता है। दुख अथवा बोझ मुझे स्वयं काटना है, कोई उसे शेयर नहीं करता। सुख होती है, खुशी होती है, उसको जरूर बांटो, वो बांटने से बढ़ती है। दुख बांटने से बढ़ता है, दुख को काटना है। दुख को काटने का साधन है तीन शक्तियों का उपयोग। पहला, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। दूसरा, समेटने की शक्ति। और तीसरा, सम्मानने की शक्ति। अगर आप दुख का अधिक वर्णन करेंगे, कोई सुन के राजी नहीं है। आपको लास्ट में एक ही सेंटेंस में आप चाहते क्या हैं? विस्तार को संकीर्ण कर दो। दूसरी बात, समेटो, फैलाओ नहीं, समेटो। और उसके बाद संभालो। जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो संभालो। साथियों को भी निर्विघ्न रखना है और साथियों को निर्विघ्न रखने की युक्ति है शेयरिंग। अगर आप मुझसे बातें नहीं करेंगे, मेरे अंदर जमा होता जाएगा, एक दिन फूटेगा। शेयर करो। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्यारे भाई और बहनों, अपन से पूछो, क्या सच में बाबा पर निश्चय है? बाबा पर निश्चय है तो बाबा की पढ़ाई और विधि विधान पर निश्चय है। फिर ज्ञान और योग के आधार से अपने विघ्न को समाप्त कर सकते हैं। फिर हमें अपनी बुद्धि को भटकाने की जरूरत नहीं होगी। कोई कुछ कहता है और हम समझते हैं शायद ये ठीक ही होगा। स्वयं से विश्वास तोड़ लेते हैं, बाबा से विश्वास तोड़ लेते हैं, तो ये हमें चेक करना है कि बाबा से निश्चय मेरा हिलना नहीं चाहिए। मैं कभी कभी देखती हूं कोई अंगूठियां पहनते हैं, कोई कुछ करते हैं। अरे भाई, बाबा से ऊपर कोई है? अपनी कमजोरी है, निश्चय की कमी है, इसलिए अन्य साधन अपनाते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि हो तो कभी बुद्धि भटकेगी नहीं। आपको उसकी कहानी पता है, मार्कंडे की कहानी है ना, जिसको कहा गया था तुम्हारी आयु 5 वर्ष की ही है। तो कहते जब उसको लेने के लिए आते हैं यमदूत, अब तुम्हारी आयु पूरी हो गई, तो उसने क्या किया, शिवलिंग था, शिवलिंग को जाकर के पकड़ लिए जोर से। अब शिवलिंग को पकड़ लिया तो यमदूत कुछ नहीं कर सकते, जो मृत्यु बन करके आए थे वो तो कुछ नहीं कर सकते, चले जाते। क्या सच में हम भी शिव बाबा को पकड़ते हैं जब विघ्न आता है, या जा करके कोई यज्ञ करते, मंदिर जाते, कुछ व्रत रखते हैं, कुछ ये करते हैं? सोचो, विघ्न विनाशक कौन? कोई कहता है, कोई कहता है, इतने मंत्र का जाप करो, इतना ही ओम भू भुवः स्वः बोलो, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, मुझे क्या करना है? ये सब कुछ तो हम करते आए थे ना, पहले से कर रहे थे ना, अब मुझे क्या करना है? ऐसे ऐसे हमारे पास योगियों के अनुभव हैं, क्लास में भी बैठे होंगे, जो असंभव भी संभव कर दिया बाबा ने। ऑफिसर की आंख पे पट्टी लग गई, वो रोज अटेंडेंस डाल रहा है। अगर मीरा का वो साथ भक्ति में दे सकता है, हम तो उसके सच्चे बच्चे हैं, हमारा नहीं देगा? ये होना चाहिए, हमारा नहीं देगा तो किसका देगा? और कोई बच्चे हैं क्या बाबा को हमारे सिवाय? हम ही तो हैं, हम उसे भुला देते हैं, वो नहीं भुलाता। इसलिए अपने चार्ट को हम चेक करें, मेरी बुद्धि कहीं भटक तो नहीं जाती है। ज्ञान योग की पराकाष्ठा पे रहें, जहां ज्ञान योग की पराकाष्ठा से, ज्ञान योग की तलवार से हम साइड होते हैं, वहां पर तो है ही अंधेरा रास्ता ना, प्रकाश तो नहीं है वहां। खुद भी हल्के रहो, साथियों को भी हल्का रखो। और ये बात मैं आपको अनुभव से कह रही हूं। अगर मेरे साथी, आपके परिवार के युगल, आपके परिवार के बच्चे, आपके परिवार के अन्य, अगर वे भी भारी हैं, तो आप हल्के नहीं रह सकते, आप पर उनके वाइब्रेशन का प्रभाव जरूर आएगा। इसलिए अब वो समय है, और ज्यादा टाइम अब शेष नहीं है, जब हमें अपने नए अकाउंट्स बनाने नहीं, नए अकाउंट्स क्लियर कर बनाने नहीं है, पुराने अकाउंट्स क्लियर करने। मैंने कुछ बोला, उस आत्मा को फील हो गया, तो उसके मन के अंदर तो तूफान चलेगा ना, उसकी शक्ल को देख के बुला के उससे बात करके फिनिश कर दो ना। हम चैलेंज लेते हैं, इसको मैं सबक सिखा के रहूंगी, इसको मैं जरूर कहूंगी, ये तो कोई तरीका नहीं है ना, मैं धर्मराज हूं क्या जो इसको सबक सिखाऊं? धर्मराज तो बाबा है ना, बाबा का काम भी मैं करूं, इतनी छुट्टी बाबा ने हमें दी हुई नहीं है। इसलिए प्यार से, सेवा में सदाहान जी, जो बड़े कहे श्रीमद, जैसा कहे। जब बाबा मेरे लिए अपनी बुद्धि चला रहा है तो मुझे अपनी बुद्धि चलाने की आवश्यकता क्या है, मैं क्यों चलाऊं? दादी जानकी कितना अच्छा कहती है, करावन हार वो है, मैं करने वाली हूं, मुझे केवल करना है, कराने वाला वो है। ये जो छोटे छोटे फॉर्मूला दादियों ने अपने अनुभव में लाए हुए हैं, उनको हम अप्लाई करें। बाबा की विशेषता यही थी, साकार बाबा की। अगर कोई बच्चा उदास होके जाता था ना, तो बाबा बुलाता था, और जब तक उसको हंसाता नहीं था तब तक उसको भेजता नहीं था, मुस्कुराता हुआ जावे, भारी नहीं जाए। ये काम हम भी तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, हमें ये काम करना। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, पहले दो, कई बार हम लोग कहते हैं मुझे रिस्पेक्ट देना है, उसका कोई फर्ज नहीं बनता। जो आपने ये कहा त्यों आप अपने आप को उस लेवल पर ले आते हो। रिस्पेक्ट देना कुछ गड़बड़ थोड़ी है, अच्छा गुण है ना। बाबा ने एक बार बहुत अच्छा कहा था, तुम झुकते नहीं हो, एक बार का झुकना अगली आत्मा को सदा काल के लिए झुकाना होता है। क्या जाता है, क्या जाता है, ठीक है। और भी सोचिएगा, और आज की क्लास के एंड में जब हम योग करेंगे, उस समय मैं चाहूंगी हर कोई जो यहां पर बैठे हैं एक संकल्प करें कि इस वर्ष हम निर्विघ्न रहेंगे और औरों को भी निर्विघ्न रहने में सहयोग देंगे। हो सकता है करेंगे? जिसके हाथ नीचे मैं समझूंगी उनको नहीं करना है, करेंगे, सब करेंगे। ओके, थैंक यू, ओम शांति।
Bye.